पुराना विश्व व्यवस्था समाप्त होने वाली है, एक नया विश्व व्यवस्था उभर रहा है। राजा के साथ विश्वासघात 21वीं सदी की शुरुआत की सबसे गहरी नैतिक विफलताओं में से एक है। एक धीमी गति से होने वाला परित्याग जिसने हॉलोकॉस्ट के बाद के कभी नहीं दोबारा के वादे को चीर डाला और कच्ची शक्ति तथा राजनीतिक सुविधा के सामने अंतर्राष्ट्रीय कानून की नाजुकता को उजागर कर दिया। अक्टूबर 2023 से आगे 29 महीनों तक दुनिया ने देखा कि गाजा अथक विनाश झेल रही है। घर मलबे में बदल गए, अस्पतालों को निशाना बनाया गया, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, पूरी परिवार मिटा दिए गए। ये तस्वीरें बच नहीं सकती थी। भूखे शिशु, बिना एनेस्थीसिया के अंग भंग किए गए लोग, हाथ से खोदी गई सामूहिक कब्रें, फिर भी उन लोगों का जवाब जिन्होंने वैश्विक मानदंडों की रखवाली का दावा किया था। सबसे अच्छे में असहाय बयानबाजी था और सबसे बुरे में सक्रिय मिलीभगत बेटो, हथियारों की खेप और कूटनीतिक कवर के जरिए। कभी नहीं दोबारा का जन्म आउशविट्स और ट्रेबलिंका की राख से हुआ था। मानवता के विवेक में उकेरा गया एक प्रतिज्ञा जो 6 मिलियन यहूदियों और लाखों अन्यों के औद्योगिक हत्या के बाद था। यह 1945 के बाद के व्यवस्था की नैतिक नींव बन गया। 1948 की नरसंहार संधि, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, नूर्नबर्ग सिद्धांत जो घोषित करते हैं कि मानवता के खिलाफ अपराध सीमाओं और संप्रभुता से परे हैं। फिर भी गाजा में वह वादा टूट गया। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने, जिसमें फिलिस्तीनी क्षेत्रों में मानवाधिकारों की स्थिति पर विशेष रिपोर्टियां शामिल हैं, नरसंहार के अनुरूप पैटर्न बताए। समूह के सदस्यों की हत्या, गंभीर शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचाना, शारीरिक विनाश लाने के लिए गणना की गई स्थितियां जानबूझकर थोपना। स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग ने इजरायली अधिकारियों को युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसमें युद्ध के तरीके के रूप में भुखमरी, सफाया, लिंग आधारित उत्पीड़न और जबरन स्थानांतरण शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ ने जनवरी 2024 में अंतरिम उपायों में पाया कि नरसंहार संधि के तहत प्रतिबंधित कार्य हो रहे हैं और इजराइल को ऐसे कार्यों को रोकने, सहायता पहुंच सुनिश्चित करने और उकसावे की सजा देने का आदेश दिया। बाद के आदेशों और सलाहकारी राय ने मानवीय पहुंच सुविधा के दायित्वों को मजबूत किया, जिसमें UNRWA शामिल है, और कब्जे के कुछ पहलुओं को गैरकानूनी घोषित किया। ये कोई अस्पष्ट कानूनी टिप्पणियां नहीं थी, ये दुनिया की सर्वोच्च अदालत और संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक संस्थाओं के बाध्यकारी घोषणाएं थीं। फिर भी अनुपालन न्यूनतम था। इजराइल ने सहायता को प्रतिबंधित या अवरुद्ध किया, UNRWA को निलंबन का सामना करना पड़ा, क्रॉसिंग महीनों तक बंद, मानवीय गलियारे सैनिकृत या निजीकरण से घातक अराजकता में बदल गए। 2025-2026 तक अकाल की स्थितियां फिर उभरी, राशन कैलोरी जरूरतों के अंशों तक कट गए, हजारों अंग भंग लोगों के लिए प्रोस्थेटिक्स रोके गए और चिकित्सा निकासी रोकी गई। 70,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए। बीमारी, भुखमरी और देखभाल की कमी से अप्रत्यक्ष मौतों को गिनने पर संभवतः बहुत अधिक, दुनिया भर में हर 5 में से एक बच्चा संघर्ष क्षेत्रों में रह रहा है जिसमें गाजा पीड़ा का केंद्र है। दुनिया जानती थी रियल टाइम सैटेलाइट इमेजरी, पत्रकारों की रिपोर्ट, एनजीओ रिपोर्ट, फिर भी जवाबदेही की मशीनरी रुक गई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का परित्याग संस्थागत था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बार बार अमेरिकी वेटो से लकवाग्रस्त, युद्ध विराम या मानवीय ठहराव लागू करने में विफल रही। शत्रुता तत्काल रोकने, बिना शर्त सहायता पहुंच और बंधकों की रिहाई की मांग करने वाले प्रस्ताव अवरुद्ध किए गए। अक्सर वॉशिंगटन से एकमात्र विरोधी वोट अन्य सदस्यों से लगभग सार्वभौमिक समर्थन के बावजूद मानवीय ठहराव प्रस्तावित और वेटो किए गए। ICJ आदेशों के अनुपालन की मांगों को नजरअंदाज किया गया। अमेरिका इजराइल का सबसे मजबूत सहयोगी, सैन्य सहायता जारी रखता रहा जबकि नागरिक हताहतों की निंदा सावधानी से संतुलित भाषा में करता रहा, संघर्ष को हमास के खिलाफ आत्मरक्षा के रूप में फ्रेम करता रहा जबकि व्यापक घेराबंदी और कब्जे से बचता रहा। यूरोप और अन्य जगहों के सहयोगियों ने चिंता के बयान जारी किए लेकिन उन्हें ठोस दबाव में शायद ही कभी बदला। प्रतिबंध टाले गए, हथियार निर्यात जारी, कूटनीतिक मान्यता बरकरार। यह महज निष्क्रियता नहीं थी, यह चुनिंदा अंधापन था। कभी नहीं दोबारा का वादा दशकों से चुनिंदा तरीके से इस्तेमाल किया गया। हॉलोकॉस्ट के लिए सही, बोस्निया के लिए, रवांडा के लिए बाद में, लेकिन गाजा में गणना बदल गई। राजनीतिक गठबंधन, लॉबिंग प्रभाव और रणनीतिक हितों ने सार्वभौमिक सिद्धांतों पर भारी डाला। परिणाम, एक लोग खुले आसमान वाले जेल में कैद, बमबारी और नाकाबंदी के अधीन, जबकि वैश्विक व्यवस्था जो ऐसी भयावहता रोकने का दावा करती थी, मुंह मोड़ती रही या इसे सक्षम बनाती रही। हर वेटो, हर विलंबित काफिले, हर विचार और प्रार्थनाएं बयान से विश्वासघात गहरा होता गया, जहां राजधानियां कार्रवाई कर सकती थी लेकिन नहीं चुनी। घमंड हमेशा कीमत वसूलता है। इस व्यवस्था के वास्तुकारों जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की राख पर संस्थाएं बनाई ताकि दोहराव न होने, मान लिया कि नैतिक अधिकार स्व टिकाऊ है, कि शक्ति कानून और विवेक को अनिश्चित काल तक ओवरराइड कर सकती है बिना परिणाम के। वे गलत थे। साम्राज्य जो उठते हैं गिरते हैं, अक्सर युद्ध क्षेत्र की हार से नहीं बल्कि वैधता की क्षरण से। जब कभी नहीं दोबारा का वादा बाध्यकारी नैतिकता की बजाय नारा बन जाता है, जब अंतर्राष्ट्रीय कानून चुनिंदा तरीके से लागू होता है, जब एक लोगों की पीड़ा भू राजनीतिक सुविधा के लिए सहनीय मानी जाती है, तब विनाश के बीज बोए जाते हैं। अब बिल आ रहा है और फ्रैंक हर्बर्ट की ड्यून में बताई गई अटल शक्ति के साथ आ रहा है। वहाँ काव्य जहाँ शक्ति, संसाधन नियंत्रण और उदय पतन के अटल चक्र इस तरह जुड़े हैं कि वे काल्पनिक से ज्यादा भविष्यवाणीपूर्ण लगते हैं। ड्यून ब्रह्मांड की तीन रूपक वर्तमान भू राजनीतिक भूकंप को डरावनी सटीकता से फ्रेम करते हैं। पहला, चिल्ड्रन ऑफ ड्यून में प्रिंसेस इरुलान का उद्धरण। यदि इतिहास हमें कुछ सिखाता है तो बस यही, हर क्रांति अपने भीतर अपने विनाश के बीज लिए होती है, और जो साम्राज्य उठते हैं वे एक दिन गिरेंगे। यह संयत चेतावनी मार्च 2026 की घटनाओं में गूंजती है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था का वास्तुकार और प्रवर्तक जो अटूट सैन्य प्रक्षेपण, डॉलर हिगिमी और चुनिंदा नैतिक अधिकार पर बनी है, अपने ही अति विस्तार के स्वप्रेरित घावों का सामना कर रही है। जो गाजा में दंडमुक्ति पर नैतिक घृणा से शुरू हुआ, वह संरचनात्मक चुनौती में बदल गया। साम्राज्य का इजराइल के लिए पूर्ण समर्थन पर जोर, दस्तावेजित भयावहता के बीच भी ग्लोबल साउथ में नाराजगी बोया और घरेलू गठबंधनों को तोड़ा। हर बढ़ोतरी नाजुक युद्ध विराम के दौरान नेतृत्व हत्या, यूक्रेन और इंडो पैसिफिक से रक्षात्मक सिस्टम का मोड़ गहरा बैकलैश बोता है। 28 फरवरी 2026 को सुप्रीम लीडर अली खामेनी की हत्या, चल रही बातचीत के बीच बची खुची कूटनीतिक विश्वास को तोड़ दिया। उनके बेटे मुज्तबा खामेनी व्यक्तिगत और पारिवारिक नुकसानों से सख्त होकर बदला और निरंतर प्रतिरोध की कसम खा चुके हैं, फिलिस्तीन के लिए प्रणालीगत सुधार के बिना युद्धविराम अस्वीकार करते हुए। इतिहास, जैसा इरुलान याद दिलाती है, स्थायी आरोहण की अनुमति नहीं देता। अमेरिका को महाशक्ति बनाने वाली तंत्र अब दृढ़, असममित प्रतिरोध के सामने कमजोरियां उजागर करती हैं। दूसरा, बैरन व्लादिमीर हरकुनेन को जिम्मेदार प्रसिद्ध पंक्ति, जो मसाले पर नियंत्रण करता है वह ब्रह्मांड पर नियंत्रण करता है। हर्बर्ट के ब्रह्मांड में मिलांश वृद्धावस्था रोधी मसाला अंतरिक्ष सभ्यता का आधार है, जीवन बढ़ाता है, चेतना विस्तारित करता है और गिल्ड नेविगेटरों को अंतरिक्ष मोड़ने में सक्षम बनाता है। इसलिए अराकिस पर नियंत्रण सब कुछ पर नियंत्रण के बराबर है। हमारे सादृश्य में तेल और कम हद तक तरलीकृत प्राकृतिक गैस मसाले की भूमिका निभाता है। दशकों से अमेरिका ने प्रवाह पर प्रभुत्व जमाया हमेशा भंडार के सीधे कब्जे से नहीं, बल्कि समुद्री लेन सुरक्षित करने वाले नौसैनिक श्रेष्ठता, मित्र उत्पादकों की गारंटी देने वाले गठबंधन और पेट्रोडॉलर सिस्टम से जो डॉलर की मांग सुनिश्चित करता है। हरमुज जलडमरु मध्य, जहां से रोजाना वैश्विक तेल का लगभग 20% गुजरता था, आधुनिक अराकिस का गला बन गया। ईरान का प्रभावी बंद या गंभीर प्रतिबंध जलडमरु मध्य का मिसाइल धमकियों, माइनिंग और बीमा रद्द करने से समर्थित उस नियंत्रण को उलट दिया। यातायात टपकने तक गिर गया। खाड़ी उत्पादक उत्पादन घटा रहे हैं क्योंकि भंडारण भर गया। बाबल मंदब से रीरूटिंग प्रयास नहीं होती धमकियों का सामना कर रहे हैं। पेट्रोडॉलर खुद कांप रहा है क्योंकि ईरान संरेखित कागो के लिए युआन या रूबल नामित पासेज का प्रयोग कर रहा है। पुरानी व्यवस्था के वास्तुकार वॉशिंगटन और उसके निकटतम सहयोगी अचानक पाते हैं कि नाममात्र नियंत्रण तब बेमानी है जब प्रवाह खुद बाधित किया जा सकता है। फिर भी गहरा अंतर्दृष्टि चिल्ड्रन ऑफ ड्यून मिनिस्ट्रीज अनुकूलन हर्बर्ट के विषयों को दोहराते हुए कि सूक्ष्म टिप्पणी से आती है, यह नहीं कि कौन मसाले पर नियंत्रण करता है बल्कि कौन मसाले को बाधित करने की क्षमता रखता है। यह उलट वर्तमान क्षण का सार पकड़ता है। अमेरिका अभी भी सबसे बड़ी नौसेना, सबसे उन्नत फाइटर और गहरे रणनीतिक भंडार का दावा कर सकता है, लेकिन ईरान रूसी खुफिया, चीनी आर्थिक हेजिंग और प्रॉक्सी नेटवर्क से अप्रत्यक्ष समर्थन के साथ दिखा चुका है कि श्रेष्ठ शक्ति बाधा में है। मिसाइल बरसात जारी रखकर, हरमुज को घोंटकर और द्वितीयक गले धमकाकर तेहरान उन लागतों को थोपता है जिन्हें साम्राज्य स्थायी रूप से मैच नहीं कर पाता। अमेरिकी गोला बारूद हफ्तों में सालों के भंडार चला देता है, इंटरसेप्टर अन्य थिएटर से मोड़े जाते हैं, सहयोगी शांतिपूर्वक बेसिंग समझौतों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं क्योंकि अमेरिका सुरक्षित साइटें ऐसी आग खींचती हैं जिन्हें वे पूरी तरह रोक नहीं सकते। कैरियर, जो कभी अटूट प्रक्षेपण के प्रतीक थे, अब हाइपरसोनिक और ड्रोन स्वार्म की दुनिया में निरंतर खतरे के तहत काम करते हैं। लफ बुलाया गया है, भारी पारंपरिक शक्ति दर्द सहने की इच्छा और असममित क्षय थोपने के सामने लड़खड़ा जाती है। इस हिसाब को भड़काने वाला गुस्सा दंडमुक्ति खत्म करने के लिए प्रणालीगत ढाव का स्वागत करने की इच्छा एक गहरी सच्चाई दर्शाता है। जब नैतिक थकान भौतिक अति विस्तार से मिलती है तो पतन तेज होता है। पश्चिम में साधारण जनता मध्यस्थित पीड़ा की तस्वीरों से सुन्न या विचलित, सामान्य हड़ताल या सहमति की सामूहिक वापसी से मशीन रोकने में विफल रही। अब दर्द पंप पर और जेब में स्पष्ट रूप से आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का रिकॉर्ड 400 मिलियन बैरल रिलीज 11 मार्च 2026 इतिहास का सबसे बड़ा हफ्तों शायद महीनों खरीदता है, लेकिन यदि बाधाएं बनी रहीं तो जून के अंत तक कमी दिखाई देगी। तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल की ओर चढ़ रही हैं, बुरे परिदृश्यों में $135 to $200। यूरोपीय बेंचमार्क जैसे TTF गैस उछल रही है, उच्चकर बाजारों में ईंधन समकक्ष 20 यूरो प्रति लीटर के करीब कल्पनीय हो रहे हैं। यह जेबी झटका दूर की अत्याचारों से कहीं अधिक तत्काल लंबे समय से अनुपस्थित जन प्रदर्शनों, सामान्य हड़तालों और चुनावी विद्रोहों को भड़का रहा है। यूरोप, विशेष रूप से जर्मनी, कमजोरी के केंद्र में है। बर्लिन की एनर्जी वेंडे परमाणु चरणबद्ध समाप्ति और कोयला कमी तेज करना ने विकल्पों को आयातित गैस और अंतराल नवीकरणियों तक सीमित कर दिया है। बिजली की कीमतों को वैश्विक जीवाश्म अस्थिरता का बंधक बना दिया है। फ्रांस परमाणु बेसलोड से खुद को कुशन करता है। पोलैंड और स्पेन कोयला या मजबूत सौर अलगाव रखते हैं। अमेरिका, चीन, रूस और जापान विविध घरेलू स्रोतों पर निर्भर हैं। जर्मनी, हालांकि, तीव्र औद्योगिक दर्द, वित्तीय तनाव और राजनीतिक क्षरण का सामना कर रहा है। चांसलर मीरज का गठबंधन वित्तीय रूढ़िवाद और अटूट प्रतिबद्धताओं पर टिका है। यूक्रेन सहायता, रूस प्रतिबंध, इजराइल के लिए बिना शर्त समर्थन, जबकि दक्षिणी राज्य आयरलैंड, स्पेन, इटली गाजा पर नैतिक पाखंड से चिढ़ रहे हैं और हंगरी स्लोवाकिया रूसी आयात प्रतिबंधों को ढीला करके व्यावहारिक ऊर्जा यथार्थवाद की ओर धकेल रहे हैं। तेल संकट हर दरार को बढ़ाता है। असमान दर्द वितरण वेटो श्रृंखला नीति उलट या EU एकजुटता के पूर्ण टूटने का जोखिम। जर्मनी या तो झुकता है घरेलू विद्रोह और समय से पहले चुनाव टालने के लिए रुख नरम करता है या ब्लॉक के टूटने का फुलक्रम बन जाता है। ईरान का रुख बाधा पैराडाइम को रेखांकित करता है। मुज्तबा खामेनेई की उत्तराधिकार ने बदले को रणनीतिक स्पष्टता से जोड़ा है। सक्रिय बातचीत के दौरान हमलों के बाद कोई ऑफ रैंप नहीं, विश्वास टूट चुका है। तेहरान महज कम तनाव नहीं मांगता बल्कि प्रणालीगत सुधार, फिलिस्तीन को उपनिवेश मुक्त करना, चाइनीज़ इकाई का विक्टन, ऐसी शर्तें जो अमेरिकी प्रशासन के लिए राजनीतिक रूप से असंभव हैं। इजराइल समर्थक नेटवर्क और लॉबिंग प्रभाव से बंधा है। चेहरे बचाने वाले वापसी के प्रयास इस अधिकतमवाद के सामने विफल हो जाते हैं। शासन की दशकों की तैयारी, मिसाइल प्रसार, प्रॉक्सी शक्ति, मुद्रा हेजिंग अब सटीकता से निष्पादित हो रही है। अमेरिकी बेस को संपत्ति से दायित्व में बदल रही है और गठबंधनों को बोझ में। यून की बुद्धिमत्ता में हर क्रांति अपने विनाश के बीच ही होती है और साम्राज्य गिरते हैं क्योंकि वे भूल जाते हैं कि वैधता के बिना शक्ति भंगुर है। राजा का परित्याग वह भूलना था जो प्रकट हुआ, घमंड जो हमेशा दंडमुक्ति मानता था। कीमत कोई अमूर्त न्याय स्थगित नहीं है, यह अब चल रहा विक्टन है। आर्थिक अराजकता, भू राजनीतिक पुनर्संरचना, उस मुखौटे का टूटना जो कभी नियम आधारित दुनिया का दावा करता था। बिल पकाया है और इतिहास क्षमाशील नहीं, इसे पूरा प्रस्तुत करता है। जो भर रहा है वह महज ढाव नहीं बल्कि परिवर्तन है। एक बहुध्रुवीय भोर जहां बाधा समानता थोपती है, जहां पुरानी व्यवस्था का नैतिक दिवालियापन एक नए, भले ही अशांत, प्रबोधन को जगह देता है। मसाला अब वॉशिंगटन की शर्तों पर नहीं बहता और इस साधारण सत्य में निहित है एक अंत की शुरुआत और शायद आखिरकार कुछ अधिक न्यायपूर्ण के बीज।